73 12 जून 1968 दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं थी, द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। बात बाप बैठे हुआ नहीं बच्चों को समझा दे। इसको कहा जाता है वाणी नॉलेज अथवा ज्ञान। ये रूहानी नॉलेज कौन सी खिलावेगा? रूहों का बाप इसको कहते हैं सुप्रीम रूह, वही बतावेंगे, यानी परम पिता परमात्मा तो सभी का बाप है ना। लौकिक बाप को कब कोई परम पिता नहीं कहेंगे। पांडवों को परम पिता कहा जाता है, वो परम धाम में रहने वाला है और बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, क्या उनका एक नाम क्या है? शिव। परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए। ज्ञान में नाम एक है शिव, शिव माने कल्याणकारी, वो एक ही है जो कल्याणकारी है और सदैव कल्याणकारी है। सदा शिव कहा जाता है, परंतु फिर भक्ति में अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो काम तो उनका एक ही है, कल्याण करना। वाचा से कल्याण करें चाहे कर्मेंद्रियों से कल्याण करें, दृष्टि से कल्याण करें चाहे वृत्ति या संकल्पों से कल्याण करें, काम तो एक ही है, फिर भक्ति में अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? नाम शरीर पर पड़ते हैं या आत्मा पर पड़ते हैं? उनका तो आत्मा का नाम शिव है, वो तो एक ही है, वो कभी बदलता ही नहीं,
शरीर बदलता
है। फिर अनेक नाम क्यों दे दिए हैं?
शरीर
बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन जिनके शरीर में प्रवेश करके सर्विस करते हैं वो ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश हुआ। वो सभी मनुष्य मत हो जाती है जो अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत हो गया है, वो सभी है मनुष्य मत, वो कोई सदैव कल्याणकारी नहीं है, उनको सदा शिव नहीं कहेंगे। अभी मनुष्य को चाहिए ईश्वर की, श्री श्री ईश्वर की मत, श्री श्री 108 की माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। निवृत्त मार्ग वाले भी श्री श्री का टाइटल अपने ऊपर लगा देते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। पतित बुद्धि है ना, बिल्कुल बेसमझ। बाबा तुमको भी कहते हैं तुम कितने बेसमझ हो, और सबसे जाति बेसमझ तुम ही बनते हो। पर जब से सबसे जाति समझदार भी तुम ही बनते हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंस्टॉलमेंट बन जाते, बुद्धि इंस्टॉलमेंट बन जाती है ना। जब ऐसी बुद्धि इंस्टॉलमेंट बनती है तो मनुष्य दीवारा मार देती है। मनुष्य मात्र जो 100% सॉल्वेंट थे तो इस समय इंस्टॉलमेंट बुद्धि बिल्कुल ही मारी गई। और ये ताला किसने लगाया? गॉडरेज का ताला लग जाता है भक्ति मार्ग में, कुछ भी समझते नहीं। इसको गॉडरेज का ताला क्यों कहते हैं? कहां गॉड और कहां माया? माया का ताला कहें, गॉडरेज का ताला क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉड जो श्रीमद रूप की किरणें देते हैं वो किरणों पर जो चलते नहीं है, ज्ञान का जो डोज देते हैं उन बातों पर चलते नहीं है, तो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए उसका नाम है गॉडरेज का ताला। समझते तो कुछ भी नहीं है। भक्ति किसकी करते हैं उनका पता ही नहीं है। अच्छा ये लक्ष्मी नारायण कौन है? ये तो ठीक है देवताएं हैं, परंतु ये आए कहां से? लक्ष्मी नारायण कहां से आए और गए कहां? तो कोई मनुष्य आता है तो कोई से जन्म लेकर आता है। लक्ष्मी नारायण कहां से आए? कहां से जन्म मिला है? अरे नर थे, नर तन में पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ करके नर से नारायण बने। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। पूजते हैं उनको जानते नहीं है। बाप कहते हैं बिल्कुल बेसमझ जैसे छोटे बच्चे हो गए। छोटे बच्चों को महात्मा कहा जाता है। वो महात्मा फिर भी भ्रष्टाचार से पैदा हो, फिर बड़े हो जाते हैं तो संन्यास करते हैं। छोटे बच्चों को तो बेकार का पता ही नहीं। अभी कलयुग में तो देखो 8-9 वर्ष के बच्चों को भी विकारों का पता पड़ जाता है। इतना घोर अंधियारा है, घोर सोझरा शक्ति को कहा जाता है। और घोर अंधियारा है कलयुग और ये चला आ रहा है। सत्य को में कहां राजाई और कहां कलयुग की गधाई, कहां तुमको हीरो हीरोइन का महल मिलता है। हीरे हीरे जड़क रहते हैं, कहां अभी इंस्टॉलमेंट बन पड़े। भारत जितना नंबर वन में था उतना और कोई खंड नहीं था। भारत की बहुत महिमा है और सभी धर्म वालों का भारत सबसे बड़े के बड़ा तीर्थ है। माना एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हर धर्म वालों को भारत में आना पड़े। पर रामावतार गीता का खंडन कर दिया है तो तीर्थ की महिमा खत्म हो गई। जिस गीता के ज्ञान से बाप बेटे नई दुनिया बनाते हैं उस गीता का मान मतबाई खरा सो। गीता सुनाने वाले पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं और सबकी सदगति कर देते हैं। हर सबसे ऊंच के ऊंच और बहुत धनवान था। ये उल्टा झाड़ है, उनका बीज ऊपर में है। उसको वृक्षपति कहा जाता है। बारह छह अड़सठ की वाणी का तीसरा चीज बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं ही वृक्षपति हूं, जब आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऊंच बन जाते हैं, फिर रावण आता है तो राहु की दशा बैठ जाती है। अभी भारत का हाल देखो क्या हो जाता है, वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, पवित्र हो, यहां आप पवित्र बनते हो तो आयु कम हो जाती है। आधा कल्प में तुम्हें 21 जन्म लेते और अभी द्वापर कलयुग आधा कल्प में 63 जन्म लेते हो तो कितना अंतर पड़ जाता है। अभी बाप समझाते हैं बच्चे सत्व प्रधान बनना है, इसलिए मामी कम याद करो, अनेकों में बुद्धि रमाते रमाते तमो प्रधान बन गए और सभी धर्म आए इस समय तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि सिर्फ देवी देवता धर्म ही तमो प्रधान है, तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो क्योंकि सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है, कोई भी धर्म वाला हो सभी प्रदर्श है, क्योंकि हम सभी आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु कहने वाले अर्थ तो समझते ही नहीं। भाई भाई हैं तो जरूर एक बाप होना चाहिए ना, आत्मा राइट कहती है। सभी प्रदर्श का बाप एक है, वो आते हैं जरूर और आकर के वर्षा उन्हें देना ही है। वो आते हैं भारत में, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब आया ये किसी को पता नहीं। अंधश्रद्धालु रावण संप्रदाय आसुरी संप्रदाय, तुम्हारी युद्ध है इन पांच विकारों से, और उन पांच विकारों में भी काम विकार तो तुम्हारा नंबर वन दुश्मन है। रावण को जलाते हैं परंतु वो कौन है, क्यों जलाते हैं कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो तो 2500 वर्ष से हमारा दुश्मन बना है और दिन प्रतिदिन ये दुश्मन बड़ा तीखा होता जाता है। द्वापर से लेकर तुम नीचे गिरते उतरते इस समय पतित बन गए। एक तरफ से उनको याद करके पूजते, दूसरी तरफ से कहते सर्द्या की कुत्ते बिल्ले आदि सब में, अरे जिसने तुमको विष्णु का मालिक बनाया उनको माया के चक्र में आकर के गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तो मुझे तो अनगिनत जन्म मिले गए, अपन को तो फिर भी 84 लाख जन्म में बताते, मुझे तो कण कण ठिककर भीतर में ठोक दिए। गालियां भी देखो कैसी देते हैं, कहते कच्छा बता मच्छा बता, ये भी ड्रामा बना, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते, बेहद की ग्लानी में चले जाते। कितने पाप आत्मा पर पड़े, इसको कहेंगे रावण राज, ये भी तुम जानते हो। इस समय सभी भक्तियां हैं, सभी की सदगति करने वाला एक राम है, परंतु उसे जानते कोई नहीं। शास्त्र में तो दंत कथाएं लिखती, सुनने वाले मनुष्य भी सत्य सत्य करते रहते। बाप कहते हैं ये सब असत्य सुना, असत्य सुनाने वाले अनेक हैं और सत्य कहने वाला तो एक ही बाप है। रावण को झूठ कहेंगे, सच खंड स्थापन करने वाला बाबा है और वो सच्चा बाबा है, रावण को तो बाबा नहीं कहा जाता है। ये तो तुम समझते हो पांच विकार हरेक में है, सब विकार से ही पैदा होते, इसलिए सबको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा होती है ना, सतयुग में तो विकार का नाम निशान भी नहीं, देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकार। देवताएं जो पूजी थे वो ही फिर पुजारी बन गए, वो फिर कह देते हैं आत्मा से परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं ये भूल है, आत्मा सो परमात्मा ये कहना रंग है। इनका आदमी भी बच्चों को समझाए, पहले पहले तो अपन को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के सर्वोत्तम कुल के हैं, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है, ब्राह्मण तो सेवाधारी हैं, उनकी राजाई नहीं चलती है। और ब्राह्मण हैं भी चोटी के, उनसे ऊंच कोई होता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों से भी ऊपर है शिव बाबा, इसलिए चोटी बनाते हैं। तो चोटी में गांठ लगाते समय क्या बना देते हैं, शिवलिंग बन जाता है, ऊंच के ऊंचे है बाबा। भारत में विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है और चोटी में बाप भी नहीं दिखाया, ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया और शिव बाप को भी उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया कुछ भी नहीं समझते, फिर मूर्ति का भी अर्थ नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, हम तो काय का बनाई दिए, तीन जानवर को बनाई दिए, अभी है ही कांटों का जंगल। कांटों का जंगल दुनिया बन गई तो कोर्ट ऑफ आर्म भी जानवरों को बनाई, उसमें फिर लिखा हुआ है सत्य में विजय। अब जानवर सत्य में विजय करेंगे क्या, सत्य की विजय जानवरों के द्वारा होगी क्या? सत्य में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे चलती के, सत्य में विजय माना विजय हो, दुनिया में सभी दूध और पानी पीते रहते, नून पानी तो कोई नहीं पीता, रावण राज्य में नून पानी, राम राज्य में खीर खंड हो जाते। अभी इस दुनिया को कहा जाता है कांटों का जंगल, एक दो को पहले नंबर का कांटा मारते रहते, पहले नंबर का कांटा है काम का। तो बाप कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, ये आदि मंत्रियों को दुख देने वाला है, इसका नाम ही है रावण राज्य। पांच विकारों को जीतते हैं, जगत जीत बन जाओ। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बन जाओ, तमोपदान पतित बने हो तो अभी से सतोपदान पावन बन जाओ। परंतु गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर के मैल के मैल को धोना है तो घर के पानी में भी धो सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं होगी घर के पानी से, न गंगा के जल से पास साफ होगी। परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य ये बात को नहीं समझते, भक्ति मार्ग के कितने ढेर के ढेर दूर होते, और ज्ञान मार्ग में एक ही सदगुरु है, बारह छह शक्ति वाणी का चौथा बात है। परंतु वह गुरु लोग कोई सदगुरु नहीं है, न तो वो सदगुरु है न टीचर है। टीचर के पास तो स्टूडेंट्स के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे। ये सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है, और सुप्रीम बाप और टीचर सदगुरु एक ही है, यानी तीन अलग अलग है। वही सृष्टि के आदिमत्य अंत का नारिश देते हैं, इस सृष्टि के आदिमत्य आदिमत्य अंत की नारिश से तुम क्या बनते हो। तुम्हारे सामने ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी, अभी तुमने 84 का चक्र पूरा किया, अभी फिर वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही अभी पतित है, आत्मा भी झूठी हो गई तो शरीर भी झूठा है, भ्रष्टाचारी शरीर है। अभी मनुष्य मात्र सभी बर्थनाटे पहनी है, सत्युग में थे बट पाउंड, अभी देखो सब गरीब बन पाऊंगे। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवारी हूं, तो सत्युग में नहीं आता हूं, कलयुगांत में ही गरीबों को आकर के साहूकार बनाता हूं, और आता भी भारत में। आत्मा ही पार्वती बाप को पुकारती है, जानती है कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा। तो बाप समझाते हैं बेटी बेटी बच्चों, तुम बाप को पुकारते हो कि रहम करो दुख हरो, और दुख में उसे सभी याद करते हो, कहते भी है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, तुम्हें तो कोई याद करते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, तुम तो सबसे पुराने भक्त, तुमने ही भक्ति शुरू की है। किसने भक्ति कहां से शुरू होती है, कौन करता है पहले पहले भक्ति, विक्रमादित्य से बोला, विक्रमादित्य की आत्मा में 84 में प्रवेश करके भगवान बोल रहे, तो तुम किससे बोला, तुम हो सबसे पुराने भक्ति, तुमने ही भक्ति शुरू की, और राजा विक्रमादित्य ने भक्ति शुरू की या विक्रमादित्य का भी कोई गुरु था, उसका भी कोई गुरु था जिसने भक्ति शुरू की, पहले अभी विचारी भक्ति शुरू की, तो ज्ञान भी पहले कैसा चाहिए, अभी विचारी ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, तो ज्ञान सागर है, शिव बाबा ही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सभी भक्ति मार्ग के शास्त्रों की अथॉरिटी, शिव बाबा को भी अथॉरिटी कहते हैं, परंतु कोई शास्त्र तोड़े पड़ते हैं वो शिव बाबा तो बिल्कुल नारी स्कूल है। कहते हैं इन सभी वेद शास्त्रों का मैं सार बताता हूं, अब तुम्हारी बुद्धि में सारी शक्ति चक्र का ज्ञान है, इसलिए तुमने सीढ़ी भी बनाई है, बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो कितने ही नॉनसेंस है, बड़े से बड़ा हिंसक प्रश्न को बना दिए। जो कृष्ण स्वर्ग का नंबर वन प्रिंस, जहां स्वर्ग में हिंसा होती ही नहीं, उनको डबल हिंसक बना दिए। देवताएं तो होती हैं डबल हिंसक, वो उन्हें डबल हिंसक बना देते हैं। ये भी कल्प चलता है भक्ति में, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तुम स्वर्ग से पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ जाते, परंतु सभी तो 84 जन्म नहीं ले सकते, ये तो कायदा ही है, मिनिमम है 1 जन्म और मैक्सिमम है 84 जन्म। अभी तुम बच्चे मैसेंजर हो, बाप का मैसेज सबको देते हो, पैगंबर हो, पैगाम देते हो ना, पहुंच पैगाम पहुंचाने वाले हरेक को बोलो कि पार्वती को बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रधान थी अभी तम प्रधान बन गई, अभी फिर मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारी पाप भस्म हो जाए, क्योंकि मैं तो सदैव ही सत्व प्रधान हूं, मैं कभी तमो प्रधान बनता ही नहीं, तो मेरे को याद करेंगे तो तुम भी सत्व प्रधान बन जाओगे। इसको योग आदि कहा जाता है, और एक बाप को ही याद करना है तो पुरानी दुनिया है, अभी तुमको चलना है नई दुनिया में। तुम जानते हो कि बाबा हमारे लिए सत्य की स्थापना कर रहे हैं, हमारे लिए तो क्या मतलब है, हमारे लिए माने देवी देवता सनातन धर्म के हैं, जो बाप के सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं उनके लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, बाकी जो और धर्म के हैं उनके लिए स्वर्ग की स्थापना नहीं होती। ये तुम्हारी बुद्धि में बनी रहे, जब तक हम सत्व प्रधान बने तब तक तुम हमारा यहां ही रहना है, क्योंकि तमो प्रधान तो नई दुनिया में कोई जा ही नहीं सकते, और यहां ही सत्व प्रधान बन रहे, ऐसे नहीं सत्य में जाकर के सत्व प्रधान बनेंगे, यहां ही दैवी गुण की धारण करने, तो अभी कोई अवगुण नहीं रहना चाहिए। देवताओं को कहते ही है सर्वगुण संपूर्ण सोना कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, और देवताओं के आगे अपन को कहते हैं हम पापी हैं बिगाड़ी हैं हिंसे हैं कपटी हैं। अभी तुमको पता पड़ गया, पहले हम भी ऐसे ही थे, अभी बाप द्वारा हम ऐसे बनते हैं, फिर उसको देवता बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बाप बन जाते थे, मूल बात है अपन को आत्मा समझ, आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी ये देह अभिमान छोड़ दो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि व्यापार आदि बल करो, अपने बच्चों के पास भी बल रहो, परंतु बुद्धि भी ये रहता है कि ये धंधा धोरी बाघ बच्चे ये सारी दुनिया कब दाखिल होनी, इस दुखधाम को भूल जाना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम है कितना सही। ये सहज बात भी याद नहीं कर सकती, बाबा साक्षात्कार कराते हैं देवता बनेंगे तो फिर स्वर्ग में रहेंगे, अभी तो ये दुनिया नरक है, सन्नार की दुनिया को भूल जाना है। और भूलना ये कोई मुश्किल बात की नहीं है, परंतु माया ऐसी है जो नई दुनिया को याद करने ही नहीं देती, बाबा का बनने ही नहीं देती, माया के साथ ही तुम्हारी युद्ध चलती है। बुद्ध का योग बाप के साथ टूटने से कुछ न कुछ पाप कर्म जरूर होते हैं, तो बच्चे अभी ब्राह्मण बने हो तो देवता बनेंगे, शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आवेंगे, देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण जो होते हैं वो तो देवताओं से भी पूछते हैं, तुम्हारा धंधा है सभी भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बने, फादर सो सन तो कल्याणकारी, बाप के बच्चे कल्याणकारी तुम हो, देवताओं को कल्याणकारी बाप का बच्चा नहीं कहेंगे, सन सो फादर तुम बनते हो, बच्चे भी फिर कोई सेवा करें जो बाप करते हैं। अच्छा बच्चे को कि रुवानी बच्चों की रुवानी बाप पता कर याद कर दो,
ये पंखे भी फिरते हैं सभी को रिफ्रेश करते हैं, तुम भी फिरते हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश करते हो, अगर स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो तो स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, तो फिर उनको समझाना चाहिए कि स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र, अपनी आत्मा के 84 के चक्र का दर्शन करना चाहिए, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। जो जो जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेगा उतना बड़ा राजा बनेगा, जरूर सुदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अभी सुदर्शन चक्रधारी बने, कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, अकेले कृष्ण को भी चक्र देते हैं, तो सुदर्शन चक्र को भी समझना है जरूर, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बात समझना तो बहुत सहज है, पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा, हमारा तो स्वदर्शन चक्र चलता ही नहीं, बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में 1 सेकंड लगता है, फिर तुम बन जाते हो विष्णुवंशी। एक सेकंड में ब्राह्मण सो देवता बन जाते हो। देवताओं को तो विष्णुवंशी ही कहेंगे। और विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो जरूर शिववंशी बनना पड़े। फिर शिव बाबा बैठ सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नई विश्व के सूर्यवंशी बनते हैं। और सूर्यवंशी होते ही है नई दुनिया में। हम ही नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्रधारी विष्णुवंशी बनने में एक सेकंड लगता है। और बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव ही विष्णुवंशी बनाते हैं और शिववंशी ही विष्णुवंशी बनते हैं। शिव बाबा के सिवाय और कोई तो बना ना सके, ये तो बच्चे जानते हैं कि विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में। और शिव बाबा सतयुग में तो आता नहीं, यहां संगम युग में ही आता है, यहां विष्णुवंशी नहीं होते। हां, ये विष्णुवंशी बनने का युग है, तुम यहां आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी है। ये अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु होता ही है सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हैं। दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु कह देते हैं, एक हो गए। यहां बच्चे हैं, बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। तो विष्णुवंशी बनने में खुशी बहुत होती है। सुदर्शन चक्र फिर आने में ही बहुत खुशी होती है। नई दुनिया नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इनसे ऊंच पद और कोई नहीं है। तो ये बनने में तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट ये है विष्णु बनना, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इसका एम ऑब्जेक्ट इस लक्ष्मी नारायण के चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में एक सेकंड लगे। और तुम ही ऐसे समझा सकते हो। इन चित्रों में भी लिखा हुआ है हम विश्ववंशी देवी देवता थे, अर्थात देवी को देव देवी कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवताएं थे, बच्चों को अभी बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे सचमुच में तुम सूर्यवंशी थे, बच्चों को अभी बुद्धि में आया है। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी धारणा स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था। बात समझाते हैं ये बच्चों, आज से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में राज्य था, वो ही पूज्य थे। उस समय भारत में कोई भी पुजारी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री ही नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा आदि की रस्म रिवाज रखी हुई है। ये शास्त्र आदि और उनमें रखी हुई रस्म रिवाजें, ये सब यहां संगम युग की यादगार हैं। सामग्री भक्ति मार्ग में ही होती है, शास्त्रों से ही निकली है। तो ये बातें बेहद का शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वही ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनको वृक्षपति भी कहते हैं। वृक्ष के पति की दशा ऊंची से ऊंची होती है, अभी वृक्षपति तुमको समझाए रहे हैं, सिखलाए रहे हैं। तुम पूज्य देवी देवताएं थे, तुम पुजारी बने हो। जब रावण राज्य शुरू हुआ, देवताएं ही वाम मार्ग में भिखारी बने। पहले देवताएं नहीं भिखारी थे, फिर वो निर्विकारी देवताएं कहां गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते भिखारी बने। एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, चाहे दिल पर चाहे कागज पर। ये बातें कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वो स्वर्ग रचते हैं, शिव बाबा ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं, और बाप के बगैर कोई दे भी नहीं सके। लौकिक बाप तो देहधारी है, तुम तो अपन को आत्मा समझते हो, आत्मा समझकर पारलौकिक बाप को याद करते हो, कहते हो बाबा। फिर बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं कि हे बच्चों, तो बेहद का बाबा हो गया ना। बच्चों तुम सूर्यवंशी देवी देवताएं थे, फिर तुम पुनर्जन्म लेते लेते पुजारी बने। अभी रावण राज्य, हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, फिर भी मरता नहीं। बारह मास बाद फिर रावण को जला लेंगे। गोया सभी सिद्ध करके बतलाते हैं कि हम अभी रावण संप्रदाय के हैं, अर्थात पांच विकारों का राज्य हमारे ऊपर कायम है। अभी हम रावण के बस में हैं, अर्थात भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट खुद कहती है ये भ्रष्टाचारी राज्य है, सत्युग में स्वेच्छाचारी राज्य था। अभी कलयुग पुरानी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम ऊपर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम अभी ब्राह्मण हैं, अभी हम शूद्र कुल के नहीं हैं। तीन छह अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। कलयुगी मनुष्यों को कहा जाता है शूद्र, तुम तो संगमयुगी ब्राह्मण हो, अब तुम शूद्र बुद्धि नहीं हो। इस समय है आसुर राज्य, गवर्नमेंट में राजा रानी तो जरूर चाहिए, अगर कोई राजा रानी नहीं है तो कहा जाता है पंचायती राज्य। यह है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। बल कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी राय देने वाले कितने होते हैं, ढेर के ढेर मिनिस्टर्स। अभी तो सब टुकड़े टुकड़े हो गए, हरियाणा अलग, पंजाब अलग। पहले एक प्रेसिडेंट था, अभी तो सब अलग अलग हो गए। उनका फिर वजीर मिला, चीफ वजीर, फिर दूसरे वजीर, क्योंकि उनको राय देने वाला जरूर चाहिए, कहीं भूल न हो जाए। अब इन लक्ष्मी नारायण का तो सूर्यवंशी राज्य था, उनको किसी प्रकार की राय देने की दरकार नहीं थी। ऐसा सूर्यवंशी बाप तुमको बनाए रहे, फिर तुमको कोई की भी राय की दरकार नहीं रहेगी। राय कौन लेते हैं? कहेंगे राय लेने वाले हैं बेवकूफ, क्योंकि उनमें अपना आकल नहीं है, इसलिए दूसरों से राय लेते हैं। जैसे उसने कहा हमारा गुरु नंदा है, हम उनकी मत पर चलेंगे, तो गोया अपनी बुद्धि नहीं है ना, तो कहेंगे मूर्ख मत, जबकि उनकी मत पर ही चलना है तो उनको ही चीफ क्यों नहीं बनाते। परंतु देखो कितने तम प्रधान बुद्धि है, अकल कुछ है नहीं। बाप को कहते हैं दुखरता सुखरता, अभी बाप आया हुआ है, अभी सुख कहाँ है, ये तो दुखधाम है। सुखधाम तो सतयुग में होगा, दुख कहाँ होता है? दुख होता है कलयुग में, कलयुग में होते हैं शूद्र। कोई पूछते हैं भगवान बाप दुखरता सुखरता कब आवेगा, जरूर कलयुग के अंत में आवेगा, सतयुग आदि के संगम पर आवेगा। वो दुखरता सुखकरता है ही शिव बाबा, और वो आते हैं तो वर्षा सुख का ही देते हैं, सुख का सागर है ना। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, ऐसा सुखधाम जहां दुख का नाम निशान नहीं, वहां तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की भी दरकार नहीं। समय पर पुराना खल छोड़ दूसरा खल धारण करते, समझते अभी हमारा शरीर बूढ़ा हुआ, पहले बच्चा सतुगुणी होता है, इसलिए सन्यासी भी बच्चों को ब्रह्मज्ञानी से ऊंच समझते हैं, महात्मा समझते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी विकारी गृहस्थियों से जन्म लेते हैं। कहेंगे हम तो फलाने के बच्चे हैं, जानते हैं ना, छोटे बच्चे को तो ये भी पता नहीं रहता है। तो इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है, श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सत्युग में था, अभी नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। अब श्रेष्ठाचारी बनावे कौन, यहां तो इस दुनिया में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, सारी दुनिया ही पतित भ्रष्टाचारी है। इसमें समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते, जो समझते हैं वो समझकर पारस बुद्धि बनते हैं। अभी पत्थर बुद्धियों का अंत होता है, पारस बुद्धियों की आदि होती है, ये है ही पारस बुद्धि बनने का समय। बाप आकर के 50 वर्ष में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोले, सत्य बाप किस रहा है और बाकी दुनिया में सब कुसंग ही कुसंग है। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं, तो कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं, जरूर बाप ही निर्विकारी बनावेंगे ना, और विकारी कौन बनाते हैं ये किसी को पता नहीं। तो बाप बैठकर समझाते हैं मनुष्य तो पत्थर बुद्धि इतने हैं जो कुछ भी समझते नहीं है, कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कौन बनाते हैं, कितना टाइम बताया,
50 वर्ष।
कौन से 50 वर्ष,
1987 to 2036।
86 to 87। अच्छा है, ब्रह्मा बाबा ने शरीर कब छोड़ा,
1969
में शरीर छोड़ा, 18 जनवरी 2008। और 2018 में पारस बुद्धि बनेंगे या नहीं बने, ब्रह्मा से विष्णु बने या नहीं बने, तो 50 वर्ष हुए कि नहीं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने में, 50 साल बताए। तो समझना चाहिए ना निर्विकारी कौन बनाते हैं, कोई का बाप मरता है पूछो कहां गया, कोई भी कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब कहाँ था
नर्क में था,
नर्क में था तुम्हारा बाप, तो तुम कौन हुए तुम कहाँ के वासी हो? कहेंगे हम भी नरकवासी ठहरे। तो देखो समझाना कितना सहज है। कोई भी अपन को नरकवासी समझते नहीं है, समझाना पड़े। नरक को वैश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। तुम जानते हो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय सभी वैश्यालय में विकार से पैदा होते हैं। सत्य को तो शिवालय कहा जाता है, वहां सब होते हैं निर्विकारी। तो उस शिवालय को कितना समय हुआ? आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। समय तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। उनके लिए ही गायन है क्या?
उनके
क्या गायन है? आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुपाल। तुमको याद है पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पवित्र पतित बने, अभी फिर पावन बनना है। पुकारते भी है पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं ना, एक ही पतित पावन सुप्रीम सदगुरु आकर के पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं मैं इसमें बैठ करके तुमको पावन बनाता हूं। इसमें बैठकर इसमें माने किसमें? रामानिया तो रामानिया तो हम बैठकर कहते
इसमें बैठकर।
खुद कहते हैं मैं इसमें बैठकर तुमको पावन बनाता हूं। बाकी 84 लाख योनियां आदि नहीं है, ये तो सभी गपोड़ा है। सिर्फ कितने जन्म? 84 जन्म सतयुग में इतने, त्रेता में इतने, द्वापर में इतने। ये लक्ष्मीनारायण की भी प्रजा थी ना, अभी नहीं है। ये लक्ष्मीनारायण कहां गए? इनको भी उनको भी 84 जन्म लेने पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वो ही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो पहले पहले उनको ही जानना चाहिए हा? किनको है? उन लक्ष्मीनारायण को जो पहले पहले आए, देवताओं की देवियों की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये राज्य मस्ट रिपीट। तुम कहते हो हम भाई भाई हैं। इस पाठशाला में यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं, हमारा यहां हम ऑब्जेक्ट भी ये है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो पास होंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कोई प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं, कोई कम बनते हैं, साधारण प्रजा बन जाते हैं। तो ये राजधानी तैयार हो रही है, सब प्रकार की चाहिए। ये भी जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं, श्री कहा ही जाता है श्रेष्ठ को। अभी किसको भी श्री नहीं कह सकते हैं, परंतु यहां तो देखो जो आवेगा उनको कह देंगे श्री, श्री फलाना। अभी श्री तो सिवाय देवी देवताओं के कोई कह ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था, रावण राज्य में भारत की महिमा को खलास कर दिया। भारत की महिमा भी बहुत है, इस भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। निंदा और महिमा व्यक्ति की होती है या जड़ जमीन की होती है? भारत बिल्कुल धनवान था, अभी बिल्कुल कंगाल बना है। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। ये देवताओं को कहते हैं। रहम दिल तो एक बाप को ही कहा जाता है, ये कोई देवता है रहम दिल थोड़े ही होते हैं। देवताएं कोई रहम नहीं करते, रहम दिल कौन है? अरे मेरे तो एक शिव बाबा ही है, एक बाप को ही कहा जाता है रहमदिल, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी तुम्हारा वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, पाप भी भस्म होंगे और साथ भी ले जाऊंगा, फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है, जो नई दुनिया थी सो जरूर बनेगी। फिर दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बना गई। तो बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूं। बाकी की जैसी गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, इनको ये भी पता नहीं है रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, कारण क्या है? विष्णु को 4 भुजाएं ही देते हैं, 1 शीश देते हैं, और रावण को 10 शीश देते हैं, 20 भुजाएं देते हैं। परंतु ऐसा कोई मनुष्य थोड़े ही होता है, अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उनसे जो भुजा पैदा हो वो भी ऐसा ही होना चाहिए। परंतु चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई पैदा होता नहीं। यहां तो इस दुनिया में सभी को दो भुजाए हैं, तो देखो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, फिर उनके कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं, कमाल है ना। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य तो ज्ञान की अथॉरिटी हो ही नहीं सकता। और ज्ञान का सागर भी तुम मुझे ही कहते हो, ये आलमाइटी अथॉरिटी बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो, बाप से ताकत लेते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राजी करते थे, तो आलमाइटी हुए। आलमाइटी फिर किसे कहा, कैसे कहा? सारी दुनिया में, हिस्ट्री में, सारे विश्व के ऊपर तो कोई राज्य कर ही नहीं सका, तो आलमाइटी तो कोई को कहीं नहीं कह ही नहीं सकते। परंतु तुम आलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे ना, कौन से? संगमुखी लक्ष्मी नारायण। ये माइक इनों को कहां से मिली? जरूर कहेंगे बाप से मिली। वो बाप ऊंचे तो ऊंचे भगवान है, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को बहुत ही सहज है, जिससे तुमको बादशाही मिल जाती है। परंतु पतित को तो विश्व की बादशाही मिल न सके। जो पतित भक्त होते हैं वो तो इन लक्ष्मी नारायण के आगे झुकते हैं, खुद समझते हैं ना, हम तो भक्त हैं। पतित पावन के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि खुद ही पतित हैं, तब तो गंगा पर जाते हैं। पतित को कब गुरु नहीं किया जाता है? भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं भगवान किस न किस रूप में आ जाएगा। बाप तो कहते हैं मैं कोई बैल गधे आदि में थोड़े ही आ जाऊंगा, किस न किस रूप में आ जाएगा। माना सर्वव्यापी समझते हैं तो ऐसे समझ लेते हैं। अरे बाप तो ऊंचते ऊंचे है ना, जो ऊंचते ऊंच था फिर उसने 84 जन्म पूरे किए, उसमें ही आता हूं। उत्तम पुरुष तो सत्युग में होते हैं, कलयुग में कनिष्ठ पुरुष होते हैं, तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और बाप ही आकर के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड। ये खेल है, एक सेकेंड का खेल है। उनको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कब जाएंगे? षष्ठी चक्र फिरता रहता है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य नहीं जानते और फिर जानवर भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य किस काम के ठहरे? मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य को मन बुद्धि होती है, और जानवरों में तो मन बुद्धि नहीं होती है। तो मन बुद्धि होते हुए भी अगर मन बुद्धि काम न करे तो क्या कहेंगे?
जानवर।
वो भी जैसे कि जानवर ही ठहरे। कौन? जो मन बुद्धि का उपयोग नहीं करते, इसलिए उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। किस लिए? किनको कहते हैं? किनको बंदर संप्रदाय कहते हैं? जो बाप के बच्चे बनते भी हैं, मनुष्य जाति के भी हैं, फिर भी सुदर्शन चक्र नहीं घुमाते, मनन चिंतन मंथन करते नहीं, मन का उपयोग ही नहीं करते, तो उनको बंदर संप्रदाय कहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम बंदर थे ना, बंदर की सेना गायी हुई है ना रावण पर जीत पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले बच्चों पर तो रूहानी बाप का दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।